आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
हेलो नमस्कार, मेरा नाम है नितिन ठाकुर और जो न्यूज एंड एनालिसिस पॉडकास्ट लेकर मैं हाजिर हूं उसका नाम है दिन भर। इस पॉडकास्ट में हम पूरे दिन की खबरें लेकर आते हैं और कई खबरें ऐसी भी होती हैं जिन पर थोड़ा तफसील से बात करते हैं। तो आज कौन सी हैं वो खबरें बताता हूँ। बात होगी किसानों और सरकार के बीच हुई नौवें दौर की मुलाकात पर, साथ ही बताएंगे कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च निकलने वाला है किसानों का, उसे लेकर किसानों में ही क्या मतभेद हैं। फिर यूपी की सियासत पर नजर, जहां मायावती ने कहकर हलचल मचाई है कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी, और लंदन से आई है एक रिपोर्ट, कह रही है कि बेंगलुरु दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता टेक हब बन गया है। और फिर बात करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई चौथे टेस्ट के पहले दिन की, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं खुशबू से हेडलाइंस।
किसानों और सरकार के बीच आज नौवें राउंड की बैठक हुई। आज की बैठक भी बेनतीजा रही। अब सरकार और किसानों की अगली बैठक 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बसपा किसी भी राजनीतिक दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी अपने दम पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। सेना दिवस के मौके पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने कहा है कि पिछले साल देश ने चीन सीमा पर एक मुश्किल का सामना किया, जिसका कड़ा जवाब दिया गया। गलवान घाटी की घटना में जो जवान शहीद हुए, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले 5,00,000 रुपए का समर्पण निधि दिया है। महाराष्ट्र के शिवाजीराव भोसले कोऑपरेटिव बैंक घोटाले को लेकर ईडी की टीम ने सर्च अभियान किया। पुणे में एनसीपी एमएलसी अनिल भोसले सहित कई लोगों के ठिकानों पर तलाशी की गई। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में संजय राउत की पत्नी वर्षा पर बैंक से कुछ लोन लेने का आरोप था, लेकिन अब दावा किया गया है कि जो 55 लाख उन्होंने लिए थे वो अब वापस लौटा दिए हैं। विश्व भर में तेजी से टेक्नोलॉजी का विस्तार करने वाले शहरों की एक लिस्ट में बंगलुरु दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता टेक हब घोषित किया गया है। साथ ही इसमें 6वें स्थान पर मुंबई को भी शामिल किया गया है। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 6.2 रही। अब तक कम से कम 34 लोगों के मरने की खबर है, वहीं सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए चीनी स्मार्टफोन कंपनी शाओमी और सरकारी तेल कंपनी चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉर्प को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 1.9 ट्रिलियन डॉलर के पैकेज का ऐलान किया है। इस प्रस्ताव को अमेरिकन रेस्क्यू प्लान नाम दिया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट गंवाकर 274 रन बना लिए हैं। कैमरन ग्रीन 28 रन और टिम पेन 38 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।
केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच एक बार फिर आज बातचीत का दौर चला। इससे पहले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने नए कृषि कानूनों की तारीफ की, कहा कि ये कानून कृषि क्षेत्र में बेहद जरूरी था, सुधार हैं ये, और ये भी कहा कि इस कानून का असर जिन लोगों पर पड़ेगा उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने की भी जरूरत है। तो आज की सरकार किसान वार्ता में क्या हुआ, बता रहे हैं आज तक रेडियो रिपोर्टर आनंद पटेल।
देखिए, आज नवे दौर की बातचीत थी किसानों और सरकार के बीच में, और ये बैठक भी बेनतीजा रही। अगली बैठक 19 तारीख को तय हुई है। कुछ लेकिन अहम जो है इसमें वार्तालाप जरूर हुई किसानों और सरकार के बीच में। जो किसान थे उन्होंने, किसान नेताओं ने कहा कि पंजाब में हरियाणा में जो हाल के दिनों में केंद्रीय एजेंसियों ने रेड की हैं आढ़तियों के खिलाफ, और जो लोग किसानों किसान संगठनों की मदद कर रहे हैं इस आंदोलन में, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये रुकना चाहिए। दूसरी बात किसानों ने ये कही कि जिस तरीके से बार बार वार्ता विफल हो रही है, इससे ऐसा लग रहा है कि ये मामला लटकाया जा रहा है, लेकिन सरकार ने कहा कि उसकी नीयत बहुत साफ है और वो चाहते हैं कि बातचीत से इस मसले का हल निकले। देखिए, दूसरी चीज जो अहम इस वार्ता के अलावा हुई है वो ये कि एक तरफ तो किसान संगठनों ने ये कह दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंटेड कमेटी है उससे कोई बातचीत नहीं करेंगे, उससे किसान संगठनों ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया। लेकिन इसके बावजूद केंद्र और किसान संगठनों के जो नेता हैं उनके बीच जो वार्ता हो रही है उसमें कोई गतिरोध नहीं आया है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। किसान नेताओं का कहना है कि चूंकि ये लॉ, ये कानून संसद ने पारित किया है, लिहाजा वो संसद के रूप के जरिए ही इस कानून की वापसी चाहते हैं। हालांकि ये देखना होगा कि सरकार कितनी उनकी बात मानती है, लेकिन आज की वार्ता में भी कुछ खास निकला नहीं। सरकार ने दो टूक कह दिया है पहले ही किसानों को कि कानून जो है वो वापस नहीं होंगे, और कुछ रद्दो बदल बदलाव जो चाहते हैं किसान संगठन वो कर सकते हैं। एक और जो बात हुई वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेकर के हुई। किसानों ने कहा कि उसके जो प्रावधान हैं वो बहुत गलत हैं और वो कानून जो अमेंडमेंट हुआ है कानून में उसको भी सरकार वापस ले। उस पर भी सरकार की तरफ से कोई बहुत पुख्ता जवाब या आश्वासन नहीं दिया गया आज।
आनंद जी, 19 जनवरी को होनी है बातचीत, किसानों की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है?
देखिए, जो सबसे अहम प्रोग्राम आ रहा है किसान संगठनों ने जो अनाउंस किया था, एक तो लोहरी के बाद उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बरसी है उस दिन आजाद किसान दिवस मनाने की बात किसानों ने कही है। देखना होगा 23 तारीख को क्या कुछ होता है, किस तरीके से किसान नेता इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और उसके बाद 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकालने की बात कही है। पहले ये बातें आ रही थी कि किसान जो है अपने ट्रैक्टर परेड राजपथ पर करेंगे। इसको लेकर के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, खुफिया तंत्र है, वो भी काफी सक्रिय हुआ हुआ है, और कहीं टकराव की स्थिति ना बन जाए, कहीं किसान सच में अपने जो ट्रैक्टर हैं वो राजपथ पर ना ले आए, इसको लेकर के एजेंसियां पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। सरकार भी इस पर पूरी निगरानी हुई है। लेकिन आज दो तीन अलग अलग बयान जरूर सामने आए। जब महेंद्र सिंह टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनसे पूछा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो 26 तारीख को सुनवाई करने जा रहा है इस मसले पर, अगर वो अगर आपको प्रतिबंधित कर दे कि आप दिल्ली में परेड नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर क्या रुख होगा किसान नेताओं का, संगठनों का? तो उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में नहीं निकालेंगे फिर। लेकिन दूसरी तरफ और भी कुछ नेताओं के बयान आए जिसमें उन्होंने कहा कि अभी ये रूपरेखा तय होनी है कि परेड का स्वरूप क्या होगा, कहाँ निकलेगी, क्या उसका रूट होगा। तो एक तरह से ये कह लिया जाए कि किसान संगठन सरकार से सीधे सीधे टकराव के मूड में नहीं है। और ये जो बातें आ रही थी कि राजपथ पे किसान रैली निकालेंगे, संसद भवन पे निकालेंगे या लाल किले पे झंडा फहराएंगे, ये सारी बातें जो हैं गलत हैं। इसको किसान संगठन जो अगुवाई कर रहे हैं, जो नेता इस पूरे एजिटेशन की, इस आंदोलन की, उनकी स्वीकृति इस चीज को नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि किसान जो नेता हैं वो सरकार से किसी तरह का टकराव नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि बातचीत के जरिए, केंद्र सरकार के जरिए ही ये कानून वापस हो।
यानी बातचीत से अब तक हल नहीं निकला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसमें भूपेंद्र सिंह मान थे, उन्होंने खुद को अलग कर लिया इस कमेटी से, तो आज तक ने उनसे खास बातचीत की, उसके कुछ हिस्से हैं वो आपको सुनाते हैं।
12 तारीख को आफ्टरनून ये कोई फ्लैश था कि कोई कुलवंत सिंह मान या कोई और उनका नाम इस कमेटी में है, तो फिर किसी और का नाम हुआ, तो उन्होंने कहा आप बाइट दो। तो मैं मुस्करा रहा था कि जब मैं है ही नहीं कमेटी में तो बाइट कैसे दूं। तो आहिस्ता आहिस्ता होते होते मैंने वो सारा बंद कर दिया, क्योंकि मीडिया को मैं एम्बेरस नहीं करना चाहता था। उसके बाद कल, माइंडेड, कल 12 बजे मुझे ऑफिशियल कम्युनिकेशन आई है। 12 बजे ऑफिशियल कम्युनिकेशन आई है दैट आई एम अपॉइंटेड। उसके बाद मैं समझता था, जब अब मैं हो गया हूं तो मैं समझता था कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर मेरे में इतना फेथ और कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है तो मैं उनसे बात पहले करूं। तो आई स्पोक टू हिम, सीजीआई को मैंने उनको बोला कि मैं इसे निकलना चाहता हूं। उसके बाद ये थोड़ी फोन करने के बाद अक्सर बात होती है, टाइम लगता है, तो 12 बजे ये करके 2:45 मैंने आपको प्रेस रिलीज दे दिया था। सिर्फ 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, 1 घंटे में ये मैंने कर लिया। सो ये जो इतने दिन क्यों नहीं किया वो वगैरह वगैरह, तो ये
बातचीत जारी है। लेकिन किसान संगठन आंदोलन में तेजी लाने की कोशिश में जुटे हैं। एक ट्रैक्टर मार्च होना है 26 जनवरी को, लेकिन उसकी प्लानिंग को लेकर ये संगठन आपस में एक दूसरे से सहमत नहीं है। मतभेद क्या हैं? ये पूछा मैंने हमारे आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार कुणाल से।
देखिए, पूरा मामला इस बात को लेकर के है कि क्या किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली की सीमा में अंदर दाखिल होंगे या नहीं होंगे, और अगर दाखिल होंगे तो उनका रूट क्या रहेगा, उन्हें आखिरकार अगर जो वहां पर पहले से सेना की परेड होती है और बाकी झांकियां दिखाई जाती हैं, क्या उनसे वो दूरी बनाकर रखेंगे या फिर कोई अन्य रूट चुनेंगे। इस पर साफ तौर पर सरकार तो चाहेगी कि दिल्ली की सीमा में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन ना हो, और इसीलिए सरकार निश्चित तौर पर ऐसी किसी भी ट्रैक्टर रैली को अनुमति नहीं देगी। लेकिन अब जाकर के जो किसान संगठनों के नेता हैं उनमें से कुछ ऐसा कह रहे हैं कि हम दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करेंगे, क्योंकि एक तरफ किसान और दूसरी तरफ जवान, वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टरों पर भी तिरंगे झंडे लहरा रहे होंगे तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो कुछ किसान संगठन के नेता हैं उनका ये कहना है कि अगर सरकार नहीं चाहती है, राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व की एक अपनी मर्यादा है और उसी मर्यादा में रहते हुए हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। तो ट्रैक्टर रैली को लेकर के ये दो बातें आ रही हैं और इसी को लेकर के विवाद है कि दिल्ली में ट्रैक्टर रैली जाएगी नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो क्या जो सामान्य तौर पर परेड होती है सेना की परेड, उसमें खलल पड़ेगा, व्यवधान डलेगा, साथ ही साथ जो विदेशी मीडिया है उसको भी कवरेज, उसमें भी कवरेज होगी, तो क्या उससे भारत की ख्याति पर भी बट्टा लग सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर के किसान यूनियन बटे हुए हैं।
हेलो डॉक्टर।
हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके, यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।
और अब बात उत्तर प्रदेश की, वहां की राजनीति की, और उसमें भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। आज 65वां जन्मदिन है उनका। इस मौके पर मेरे संघर्षमय जीवन और बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा भाग 16 इस नाम की किताब जारी की गई। एक अहम ऐलान भी हुआ। यूपी की पूर्व सीएम ने कहा है कि यूपी में और उत्तराखंड में जो चुनाव होने हैं उन्हें बीएसपी अब अकेले लड़ेगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मायावती का ये जो फैसला है बहुत रिस्की है, तो हमने पूछा लखनऊ में आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार अभिषेक से कि क्या यूपी की सियासत पर उनके इस ऐलान का कोई फर्क पड़ेगा।
देखिए, मायावती ने जिस तरीके से आज साफ कह दिया है कि वो अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों का चुनाव अकेले लड़ेंगी, तो ये थोड़ा चौंकाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले बिहार में जो चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया MIM के साथ उन्होंने टाई अप किया था, कई छोटे दलों के साथ टाई अप किया था, और उम्मीद ये की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 में चुनाव होने हैं उसमें भी मायावती किसी टाइप के साथ जा सकती हैं, यानी कुछ गठबंधन कर सकती हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश को लेकर उनका हमेशा से ही एकला चलो का इतिहास भी रहा है, और बीजेपी के साथ छोड़ दें या फिर पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ की बात छोड़ दें तो मायावती अकेले लड़ती रही हैं। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटा था, उम्मीद ये की जा रही थी की जा रही है कि मायावती अकेले लड़ेंगी, और आज उन्होंने उसका ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 2007 में चुनाव के बाद उनकी वापसी हुई थी, 2007 के चुनाव जो उन्होंने जीता था और 2012 तक जो उन्होंने सरकार चलाई थी, ऐसा ही 2022 के चुनाव में होगा। उन्होंने आज अपने दाताओं को ये निश्चित तौर पर एक संदेश दिया है और साफ कह दिया है कि किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा, लेकिन अभी भी बहुत वक्त बचा है, देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये पूरा का पूरा जो उनका स्टैंड है वो क्या यही रहता है या कुछ बदलता भी है।
इस तरह से चुनावी मैदान में अकेले उतरना, वो भी ऐसे वक्त में जब पार्टी कमजोर हो रही है, मायावती से क्या साध लेंगे अभिषेक?
लगातार ये माना जा रहा है कि बीएसपी कमजोर होती जा रही है और उसकी वजह भी है। लगातार पिछले कुछ दिनों की बात करें तो बीएसपी के कई बड़े नेता छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। हालांकि पिछला जो चुनाव हुआ था पार्लियामेंट का, जिसमें दोनों बीजेपी और बीएसपी और समाजवादी पार्टी साथ लड़े थे, इन दोनों में बीएसपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और जो जब गठबंधन हुई थी तो लोगों को उम्मीद थी कि ये गठबंधन आगे चलेगा, लेकिन मायावती ने इस गठबंधन को खत्म किया, तोड़ दिया। अब जबकि बीएसपी कमजोर होती जा रही है लगातार, लेकिन बीएसपी कतई नहीं मानती, मायावती कतई नहीं मानती कि वो कमजोर हो रही हैं, और लगातार इस बात का एहसास वो अपनी मीटिंग्स में या अपने अपने जो उनके प्रेस रिलीज आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें वो करती रही हैं। मायावती के पास बहुत विकल्प भी नहीं है, वो सपा के साथ नहीं जाएंगी, उन्होंने ऐलान कर दिया है, उनके साथ गठबंधन तोड़ा है। वो कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगी क्योंकि कांग्रेस के साथ का गठबंधन उन्हें उत्तर प्रदेश में, उनको लगता है कि उनके वोट बैंक में ही चेनमारी हो जाएगी। बीजेपी के साथ वो जा नहीं सकती। छोटे छोटे दल कई बचे थे और जिसकी चर्चा यही चल रही थी कि वो इन छोटे दलों के साथ शायद जाएं, लेकिन इतिहास यह है कि मायावती हमेशा से अकेली राजनीति करने में यकीन रखती हैं और शायद उन्होंने यही संदेश भी दिया है। लेकिन कमजोर होती मायावती के लिए निश्चित तौर पर आज का जो उनका बयान आया है वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए है कि हम अकेले चलेंगे, अकेले लड़ेंगे और जीत करके दिखाएंगे। तो अभी वक्त बचा है, अभी देखना होगा कि क्या आने वाले आखिरी महीनों में वो किसी गठबंधन को करती हैं या नहीं, या किसी दल को अपने साथ लेती हैं या नहीं। लेकिन जो पॉलिटिकल घटनाक्रम है वो साफ दर्शाता है कि मायावती बिल्कुल अकेले जाएंगी, भले ही वो कमजोर क्यों ना हो।
लंदन की एक एजेंसी है dealroom.com, उसने रिपोर्ट जारी की है। उसके मुताबिक 2016 के बाद से बेंगलुरु दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर, यानी कहिए कि टेक हब के रूप में उभरा है। बेंगलुरु के बाद इस लिस्ट में है लंदन, म्यूनिख, बर्लिन, पेरिस। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई भी इस लिस्ट में है, लेकिन छठे नंबर पर है। तो हमने बात की इंडिया टुडे के एसोसिएट एडिटर शुभम शंघधर से और पूछा ये कि किन वजहों से बेंगलुरु नंबर वन पोजीशन पर आया है।
जी, लंदन की एक एजेंसी लंदन एंड पार्टनर्स ने ये डेटा एनालाइज किया है जिसमें ये पाया गया है कि बेंगलुरु पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा वीसी इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने वाला शहर बन गया है। ये डेटा जो एनालाइज किया गया है 2016 से 2020 के दौरान जो वेंचर कैपिटलिस्ट का इन्वेस्टमेंट आया है उसके आधार पर तैयार किया गया है। उसी आधार पर यह तय किया गया है कि कौन सा सिटी किस स्थान पर है। सबसे ऊपर जो नाम है वो निश्चित तौर पर बेंगलोर का है। इसके बाद यूरोप के चार शहर लगातार हैं, उसमें लंदन है, म्यूनिक है, बर्लिन है, पेरिस है, और इसके बाद फिर छठे नंबर पर जो है वो भारत का ही एक और शहर जिसे हम इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं इंडिया की, मुंबई, वो आता है। तो इस तरह अगर आप देखें तो टॉप छः शहरों में नंबर वन पर और नंबर छठे स्थान पर, दोनों स्थान पर बेंगलुरु और मुंबई हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये हमें समझना होगा कि इंडिया दरअसल बहुत सारी आईटी कंपनीज की आउटसोर्सिंग का हब है और बेंगलुरु जो लंबे समय से आईटी का हब रहा है उसके पास लगातार इन्वेस्टमेंट का आना, नए नए स्टार्टअप्स यहाँ से जन्म लेते हैं, नए स्टार्टअप्स की वजह से, नए आइडियाज़ की वजह से बहुत सारा वीसी इन्वेस्टमेंट इस शहर पर आता है, इस शहर में आता है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया, भारत में और शहर ऐसे नहीं है जो आईटी एक्टिविटीज से जुड़े नहीं है, लेकिन एक इकोसिस्टम होता है जिसके आसपास क्रिएट होता है। अगर हम देखें तो हैदराबाद है, इवन नोएडा है, मुंबई है, पुणे है, और भी कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर अच्छे स्टार्टअप्स, आईटी के कुछ सेंटर्स, बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज हैं। लेकिन बेंगलोर की जो पहचान है वो दरअसल एक स्टार्टअप शहर के रूप में है। बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो बेंगलोर से ही बड़े बड़ी कंपनीज हमने उनको बनते देखा है और अभी भी नए नए आइडियाज़, नए नए चीज़ें वहाँ से हम आती देखते हैं और इसी वजह से अभी भी हम वहाँ पर बहुत सारे नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें वहाँ आते देखते हैं और यही वजह है कि बेंगलोर को इस लिस्ट में शीर्ष पर स्थान मिला है।
बेंगलोर दुनिया का तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब बना है, इससे वहां की लोकल इकोनॉमी को किस तरह से फायदा होगा, खासकर रियल एस्टेट को?
निश्चित तौर पर ये एक वाजिब सवाल है और इसका एक फायदा भी मिलता है। जब कोई शहर, जब कोई खास जगह अगर किसी हब के तौर पर बड़ी होती है, बनती है, पूरा इकोसिस्टम वो अपने साथ लेकर चलती है, तो निश्चित तौर पर वहां के जो रियल एस्टेट प्राइसेस होते हैं वो बढ़ते हैं। हमने अभी रिसेंट जो रिपोर्ट आई है, अगर मैं नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट को कोट करूं तो एक रिसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें ये दिखाया गया है कि जो रेंटल्स हैं वो पूरी दुनिया के बड़े बाज़ारों में, आठ बड़े बाज़ारों में कितने कितने घटे हैं या ऑफिसेज की डिमांड कितनी घटी है। तो उसमें भी हम देखते हैं जो ये सदर्न स्टेट हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो बेंगलोरे हो, इन स्टेट्स में जो ऑफिसेज की डिमांड थी उसमें भी कोई बहुत बड़ी कमी नहीं आई है। ओवरऑल पूरे भारत की बात करें तो निश्चित तौर पर ऑफिस एब्जॉर्प्शन जो है वो 44% ही कम हुआ है पिछले साल की 2019 की तुलना में 2020 में, लेकिन इन शहरों में निश्चित तौर पर ऑफिस की मांग बनी रही है और किराए भी बहुत ज़्यादा घटे नहीं हैं, स्टेबल रहे हैं, बढ़े नहीं हैं निश्चित तौर पर, लेकिन घटे भी नहीं हैं। जबकि उसी के ठीक सामने आप सापेक्ष अगर देखें तो चाहे मुंबई की बात करें, दिल्ली NCR की बात करें, यहाँ पर ऑफिसेज के रेंट्स भी घटे हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई एक दिन का प्रोसेस है, एक साल का प्रोसेस है, एक इकोसिस्टम बनने में एक लंबा समय लगता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर IT के लिए हमारे दिमाग में नाम आता है बेंगलोर का, तो कहीं ना कहीं अगर हम दूसरी इंडस्ट्री की बात करें, हम कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करें, हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो शायद हमारे दिमाग में दूसरे शहर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका इकोसिस्टम तैयार हुआ है। अगर इस किसी स्टेट में इस तरीके का कोई शहर होता है जहाँ से बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा न केवल उस शहर की लोकल इकोनॉमी को बल्कि पूरे स्टेट को मिलता है।
बात क्रिकेट की, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट आज से ब्रिस्बेन में शुरू हो गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी ऑस्ट्रेलिया, दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट खो दिए और 274 रन बना लिए। भारत के लिए पहली पारी में टी नटराजन ने 2 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर ने 1-1 लिया। तो कैसा रहा खेल आज का, कल के खेल में मैच क्या करवट ले सकता है, इस पर बात की हमारे सहयोगी ऋतुराज ने स्पोर्ट्स कोरेस्पोंडेंट मोहम्मद इकबाल से।
इकबाल, स्वागत है आपका इस बातचीत में।
धन्यवाद ऋतुराज।
पहले दिन का खेल 274 पे 5, यहां से अगर 100 रन भी ऑस्ट्रेलिया बना लेती है तो भारत के लिए कल मुश्किल हो सकती है।
बिल्कुल मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की है, वाकई आज क्रेडिट देना होगा मानस लाभुशेन को, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की। हालांकि किस्मत जरूर उनके साथ रही कि 2-2 कैचेस उनके छूटे, खासतौर पर अजिंक्य रहाणे ने जो कैच छोड़ा ऋतुराज, वो एक तरह से बहुत ही आसान मौका था, लेकिन वही है ना कि 100 में से 99 मरतबा खुद अजिंक्य रहाणे उस कैच को पकड़ लेते, लेकिन क्योंकि दिन आज मानस लाभुशेन का था तो उनको 2-2 जीवनदान मिले और उन्होंने शतक पूरा किया। लेकिन यहां से बिल्कुल सही कहा आपने कि 100 रन भी अगर और ऐड हो जाते हैं तो 400 के आसपास ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहली पारी में हो जाएगा, और फिर जब ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 400 बना लेगा तो भारत के लिए ही तमाम मुश्किलें रहेंगी आने वाले दिनों में।
पहले सेशन में भारत ने जल्दी विकेट झटके, दूसरा सेशन जो है ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया, और तीसरे सेशन में भारत ने वापसी की। अगर तीसरे सेशन में भारत अच्छी वापसी करता तो बोर्ड पे अभी कुछ और नजर आता। इकबाल,
बिल्कुल, देखिए हमने विकेटें हासिल की लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पार्टनरशिप करने का मौका भी दिया। जैसे मानस लाभुशेन ने जिस तरह की बैटिंग की, वो अगर जो कैच रहाणे ने छोड़ा या एक और जीवन दान जो उनको मिला था, अगर वो जल्दी आउट हो जाते तो जो जिस तरह की बैटिंग कैमरून ग्रीन और टीम पेन कर रहे हैं वो शायद ना हो पाता, क्योंकि उनके ऊपर फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड दबाव हो जाता साफ तौर पर कि टॉप ऑफ द ऑर्डर जो है विकेट उनका गिर गया होता। लेकिन क्योंकि वहां पर एक बढ़िया आधारशिला रख दी मानस लाभुशेन ने, इसके बाद जाहिर सी बात है कि इनसे क्रेडिट आप छीन नहीं सकते, जिस तरीके की बैटिंग ग्रीन और टीम पेन ने की है, बहुत अच्छी बैटिंग की है इन्होंने, और भारत की गेंदबाजी में कहीं ना कहीं जो इनएक्सपीरियंस है ऋतुराज वो तो साफ तौर पर झलक ही रहा है।
और ग्रीन और टीम पेन को सुबह आउट करना सबसे बड़ी चुनौती होगी भारतीय गेंदबाजों के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहां से अगर इकबाल 2 सेशन खेल लेता है तो समझ लीजिए कि तीसरे टेस्ट जैसी नौबत आ जाएगी इंडिया के लिए चौथे टेस्ट मैच में।
बिल्कुल सही बात है, ऑस्ट्रेलिया को अगर आपने जल्दी आउट नहीं किया तो फिर ये टेस्ट मैच जो है आपकी रीच से, आपकी पहुंच से बाहर चला जाएगा। तो जैसा कि हम इस टेस्ट सीरीज में अमूमन करते रहे हैं, ओवरनाइट स्कोर से जब भी ऑस्ट्रेलिया आगे खेलना शुरू करता है तो हम उनको जल्दी निपटा देते हैं, तो उम्मीद करते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि ऑस्ट्रेलिया कल फर्स्ट सेशन में ही ऑल आउट हो जाए और बहुत ज्यादा रन जोड़ ना पाए, फिर एक बार जो है मौका रहेगा भारतीय बल्लेबाजों के पास वापसी करने का।
क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया जितना अधिक स्कोर बनाएगा, हमारे जो 3 प्रमुख बल्लेबाज हैं पुजारा, रहाणे और रोहित शर्मा, उन पे दबाव लगातार बढ़ता चला जाएगा।
बिल्कुल, देखिए हालांकि अच्छी बात यह रही है कि हमने जो है पिछले मैच से ओपनिंग में एक बढ़िया प्रदर्शन किया है, दोनों पारियों में अच्छी ओपनिंग मिली हमें, उम्मीद करेंगे इस टेस्ट मैच में भी हमें ओपनिंग अच्छी मिले, क्योंकि जब तक ओपनिंग अच्छी नहीं होगी तब तक जो है आप टेस्ट मैचेस में बड़ा स्कोर नहीं बना सकते, मतलब रेगुलरली, तो ऐसी सूरत में ओपनिंग बहुत जरूरी हो जाती है, और क्योंकि आपके पास हनुमा विहारी भी नहीं है, रविंद्र जडेजा भी नहीं है, अश्विन भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपकी बैटिंग जो है वो कमजोर है, तो ऐसी सूरत में जिन खिलाड़ियों का आपने नाम लिया इन खिलाड़ियों को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि हर रोज ऋषभ पंत भी वो कारनामा नहीं कर सकते जो उन्होंने पिछले मुकाबले में सिडनी के अंदर किया।
और कल ऑस्ट्रेलिया जितनी जल्दी आउट होगा भारत के लिए उतनी ही अच्छी खबर होगी। शुक्रिया इकबाल अपना समय देने के लिए।
धन्यवाद ऋतुराज।
तो आज के दिन भर में इतना ही, हमें कुछ भी लिखकर भेजना चाहते हो तो radio@aajtak.com हमारा पता है। आपके मेल्स का इंतजार रहेगा, शो में शामिल भी करेंगे। अभी इजाजत दीजिए इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर प्रतीक वाघमारे को और साउंड इंजीनियर कपिल देव सिंह को। मेरा नाम है नितिन ठाकुर, सुनते रहिए आज तक रेडियो।